आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनामिका और आज मैं आपको सुनाऊंगी सहबा जाफरी की लिखी कहानी समझ सके ना लोग सयाने। लचमा ओ लचमा, ड्योढ़ी पर जा सांकल बजा हौले से टहूका रज्जो ने। अरे वाह, रज्जो जीजी आई हैं। लचमा गले लग गई। बुआ बुआ, कृष्णा पंत के दो नन्हे नन्हे बच्चे रज्जो को घेर उससे चिपट गए। रज्जो ने माथा चूम चॉकलेट का डिब्बा उन तक बढ़ा सवाल दागा, कृष्णा कहाँ है? लेटे हैं पीछे, आप अंदर हो आओ, हम अभी चाय चढ़ाती हैं। भोली लचमा रज्जो की महावर सी लाल चिकनी एड़ियों को देख ऐसे शर्मिंदा हुई मानो उसकी फटी एड़ियां छुप जाना चाहती हूँ। पिछली कोठरी में खांस खांस कर दोहरा होता कृष्णा पंत उठने की कोशिश करने लगा था। कमरे में बस उतनी ही रोशनी थी जितनी की 5 वॉट के बल्ब से आती है। अंगीठी के कोयलों से कोठरी गर्म नहीं हो पा रही थी, फटी गुदड़ी क्या गर्म होती। पिछले दशहरे के मेले से लाए कंबल में लिपटे कृष्णा के चेहरे पर एक सूखी मुस्कान खेल गई। हे राम, तुम्हें तो ज्वर है, रज्जो बोलने को हुई थी कि कलई वाले ग्लासों में चाय ढाल लाते हुए लक्ष्मा बोली, 4 दिन से है जीजी, माह भर से खांस रहे हैं और अस्पताल जाने का नाम नहीं। कहते हैं नई बीमारी चलन में है, कहीं वही निकल गई तो खौफ से मर जाऊंगा। जा प्रभु का रिक्शा ले आ। कमरे से बाहर निकल गली के मोड़ पर घूमते हरनाम के हाथ में 20 का नोट थमाते रज्जो ने मुंह को दुपट्टे से लपेटा। ये कोरोना की पहली लहर थी। गांव हो या शहर, सब के सब रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांट दिए गए थे। सुनते हैं सरकारी अस्पतालों में जो एक बार गया तो फिर उसका शव तक न लौटा था। रज्जो का कंधा थाम रिक्शे में बैठ उसने एक हसरत भरी निगाह बच्चों और आंगन पर डाली। रज्जो, अब भी नाराज है क्या? नहीं, तेरे कंधे पर सर रख लेट लूं? जवाब में मुस्कुराकर उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया रज्जो ने। सैंपल टेस्टिंग के लिए कृष्णा को अंदर ले गए और रज्जो अतीत में खो सी गई। 3 साल की उम्र से कृष्णा प्यारा था उसे, उससे 2 ही साल तो बड़ा था पंतों का ये छैला बांका। चूरन वाली गोलियां, गंदे पानी की कुल्फी और नारंगी की टॉफियां खा साथ साथ बड़े हुए। नहर पर खरगोशों का पीछा करते करते साथ साथ पिटे और फिर गांव की पाठशाला में पढ़ते लिखते साथ ही कब जवान हो गए पता ही न चला। बकर वाली गुज्जरों की लड़कियां एक तो वैसे ही हुस्न परी होती हैं, तिस पर रज्जो तो ऐसी लगती थी मानो अम्बा वाले मंदिर में आरती का दीपक जला धरा हो। नख से शिख पद्म सी खिली, धवल दुग्ध धारा सी उजली और साक्षात उषा की लालिमा सा कांतिमान मुखमंडल। रूप गर्विता है लोग कहा करते थे, रूप का रोए कर्म का खाए, मर जानी कभी हाथ लगवा दिया कर कामों को, कौन ब्याहेगा तुझे वरना, दादी अक्सर झिड़का करती थी। वो आले में धरी गुड़िया सी कभी इत देखे कभी उत देखे खिलखिला पड़ती। स्त्री लाख सुघड़ हो सुंदर ना हो तो ब्याह के बाजार में महंगे दूल्हे नहीं जुटते। पिछली छतर पर गोसल खाने की खिड़की पार घना जंगल दिख पड़ता था, उसके परे पंतों की अटारी। अब कोई कहता कि कौन तुझे ब्याहेगा, वो लजाकर इसी दुछत्ती के सपनों में खो जाया करती थी जहाँ कृष्णा पंत अपने आधे गीले गठीले खुले और गौर वर्णी शरीर से नित्य सुबह सूरज को अर्घ्य दिया करता था। गांव को अभी शहरों की हवा नहीं लगी थी, इसी से पता नहीं चल पाता था कि जो रोज बरोज होता जा रहा है वो प्रेम है या कुछ और। पर रज्जो को ठीक ठीक पता था कि उसकी गुजर कृष्णा के बगैर नहीं हो सकती। कृष्णा जवान होने लगा था। अपने पिता की लूना पर बैठ जब वो घर लौटती रज्जो को लिफ्ट देता, रज्जो उससे ऐसे लिपट जाती मानो पृथ्वीराज के पीछे संयोगिता बैठी हो। एक रोज जो बादल पर से घर लौटती रज्जो को लिफ्ट देते कृष्णा को पेड़ों के नीचे रुकना ही पड़ा। मेघ यूं कि इंद्र के दरबार में सैकड़ों सरगम एक साथ गूंजे और रज्जो यूं कि साक्षात मेनका। उसने आंख भर कर रज्जो के गुलाबी चेहरे को देखा तो खुद पर लगाम नहीं रख पाया। रज्जो और वो ऐसे घुले थे उस क्षण मानो बादल से बिजली और चंदन से पानी मिलाए हों। उसी क्षण प्रण लिया छोटे पंडित ने कि चाहे जो हो, मरेगा तो इसी गुज्जरों की छोरी के घुटनों पर सिर रख। और रज्जू ने भी कसम ली थी, जिएगी तो बस कृष्णा की खातिर। प्रेम जब होता है तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, बस करने वाले बेचारों को छोड़कर। रज्जू अब लजाने लगी थी, कृष्णा अब हर्षाने लगा था। गाहे बगाहे एक दूसरे के घरों में काम निकल ही आता था दोनों को। सोने के पहले लाख रोका डाले नजरों पर वो उधर फिसल ही जाती थी, जिधर कृष्णा की अटारी की टिमटिमाती बत्तियां नजर आती थी। खुद को छिपाने की कला विधाता ने किस पूरेपन से औरत को दी है, जवाब नहीं उसका। चुपके से रोज उन्हें ताक, चुपचाप सोने चली जाती थी रज्जू। इधर ये सोनी महिवाल क्या बने, सारी दुनिया केदो हो गई। जात समाज ऊंच नीच कितने कच्चे घड़े थे, जिन पर तैर कर रोज रज्जू और कृष्णा चनाब से फैले गांव भर को पार कर शिव मंदिर के पीछे मिला करते थे। और इस मिलन में रोज वही वादा, जीना तेरे लिए और मरना तेरे घुटनों पर। एक रोज जो तीन बच्चों के बाप विदुर बिरजू कोतवाल की निगाह रज्जू और कृष्णा पर क्या पड़ी, कोई 7.5 ही लग गई। बाप ने एक न सुनी, मार पीट अपने से 20 साल बड़े कोतवाल से ब्याह दी गई रज्जू। फिर कुछ नहीं, जीना तो उसे था ही। रज्जू की जीप की आवाज क्या आती, बाड़े के मुर्गे मुर्गी शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगते। भूरा कुत्ता कैंकें करता हुआ दुम हिलाता रज्जू से बहनापा गांठने लगता, और मलमल की धोती पर सूखते चावल के पापड़ खनक हो हवा से इधर उधर उड़ने लगते। तोरी की बेलों में अलसा कर लेटा बागड़ बिल्ला आंख खोल फिर से लगा लेता, मानो रज्जू के आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रज्जू के आने से उसे ही क्यों, बहुतों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर रज्जू अब कोतवालिन बन ऐसे ही ठाट से आती थी कि उसकी गोटे लगी सलीम शाही जूतियों की पगथलियां और मोटी मोटी चांदी की पायलों की रुनझुन उसका दबदबा जाहिर किया करते थे। आज भी ऐसे ही आई थी वो। दरबान बड़ी बड़ी टोकरियां उतारने लगा था, दो बकरी के नन्हे मेमने भी उतारे गए, और सीट के नीचे से गन्नों के रस से लबरेज खुशबुएं छलकाती सुराहियां भी एहतमाम से उतारी जाने लगी थी। आखिर में सलाम ठोंक दरबान पलटने को हुआ था कि रज्जू एक उड़ती सी नजर तमाम टोले पर डाल अंदर आ गई थी। माँ अचानक से गीले हाथ धोती से पोंछ उसे बाहों में भरने लगी थी, और गली के दोनों ओर की खिड़कियों के पर्दों की ओट से झांकती औरतों की ईर्ष्यालु आंखें रज्जू का जायजा लेने लगी थी। सब लोग साथ लाए सामान का आटा बांटा करने में लग गए थे। उसने पर्स में रखा विदेशी चॉकलेटों का डिब्बा उठा ऊपर की राह ली थी। टिन के सायबानों पर कुहासे के टपटपाने से धीमा धीमा संगीत फूट रहा था। बरसाती के परे कोहरे के उस पार कृष्णा की पत्नी लक्ष्मा तेजी से भाग सूखती मिर्चों को उठाने का उपक्रम कर रही थी। उसने अपनी फटी धोती पर तमाम हुनर बिखेरते ऐसे पैबंद लगाया था मानो पैबंद था ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कृष्णा की गृहस्थी के छोटे मोटे अभावों पर भी वो छाप लगाए ढाके ढूंके बैठी थी, मानो कुछ अभाव था ही नहीं। कमरे में आ रज्जू टेबल पर सर झुका बैठ गई। जिस ठाट से लद कच्ची उम्र की कोतवालिन बन वो मायके आई थी, उसने उसे उतार कर परे धर दिया। बिछुआ मंगल सूत्र छोड़ 16 श्रृंगार खुद से परे कर फिर से सलवार कमीज वाली रज्जू बुआ बन वो कृष्णा पंत की अटारी की ओर बढ़ गई। एक एक पग जोगन की तरह अलख लगाता मंदिर की ओर उठता, मानो मीरा का पग था। पूरे दस साल गुजर गए इन बातों को। ऐसे ही तो मिल रहे हैं दोनों। फिर
मैडम वो पॉजिटिव है,
खिड़की से झांकती अतीत में खोई रज्जू फिर वर्तमान में आ गई। अस्पताल में कोई बेड नहीं और ऑक्सीजन तो नामुमकिन ही समझो। डॉर्मिट्री में मुंह लपेटे कृष्णा का इंतजाम कर वो कुछ घड़ी को घर लौटी। दुपट्टे के पल्लू से बंधे कुछ बचाए हुए रुपए लक्ष्मा के हाथों पर रख कृष्णा के ठीक होने का आश्वासन दे वो फिर अस्पताल आ गई। तीन दिन से पिछवाड़े के पीपल के नीचे ही डेरा जमाए है। लक्ष्मा रोज टिफिन भिजवाती है। अस्पताल में रेमडेसिविर नहीं बचे, पर जाने कैसे कृशकाय हुआ कृष्णा आज बोल पा रहा है। रज्जो, मेरा सिर तेरे घुटनों पर रख ले। रज्जो की आंखों में कोई नमी नहीं, उसकी आंखें सूख चुकी थी। उसने कृष्णा का सिर उठा अपनी गोदी में रखा। ये क्या, खिड़की के परे दूर आसमान को देखती रज्जो की आंखें पथरा गई थीं, और कृष्णा ने गोदी में सर रखते ही अपनी गर्दन डाल दी थी। और क्या, सयाने कहते हैं शिव मंदिर में हाथ पकड़, दोनों अपने लिए ऐसे ही तो मौत मांगा करते थे वो दोनों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज़।